મારું કામ આપ. ભગવાન કે અંગુઠી કો પલતા ઇતના કોમલ ઉનકા અંગ હૈ જો તો ગોપિયા જાનતી હૈ જસોદા મૈયા જાનતી હૈ વિશેષ કરકે ગોપિયા જાનતી હૈ વો અનુભવ કરા ઓર અનુભવ કરતે કોઈ ભી ચાહું નહીં ચાહું દે યાર નામ કરે છે
ભાવ અવસ્થા થી પ્રથમ અવસ્થા સબ
ये सही कर सकता है कुछ कुछ पूरा नहीं, इसलिए उसके लिए हमने सिद्ध के बताया था अंत उसके द्वारा महाप्रभु को देखो कैसे कुशल कुशल कर देगा था वो अपने कभी 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 बाढ़ नहीं लंबा कभी कुछ कभी कुछ ये अष्ट शास्त्री इत्यादि भाव में इसका वर्णन नहीं है कि सुराधिकारी ने ये सब होते थे नहीं किया बन जाता है। इस प्रकार अपनी शक्ति का विस्तार करता है भक्त के हृदय में एक साथ संतज्ञ माधुर्य सौभाग्य एक साथ कृष्ण के अनुभव यही महासुख होगा। ये आप नहीं कर सकते कि भक्त के मन की एकाग्रता नहीं करने से एक साथ ऐसा होता, ऐसा नहीं। मन एकाग्रता एक साथ में अनेक माधुर्यों का आचरण कैसे हो सकता है? और हो सकता है भगवान की अत्यंत शक्ति भक्ति और प्रेम की भी अत्यंत शक्ति एक साथ पूछा पूछा इस प्रकार से अलौकिक विषय में लौकिक अनुभव और तक की कोई गुंजाइश तक मत करो इसमें
मणि मत दूर लो
आपने आप मणि में कहते शक्ति होती है मंत्र में कहते शक्ति होती है अलौकिक किसी को सांप काट दिया और फोन के ऊपर किसी ने बताया फोन को मैसेज को किया मंत्र कर दिया ये इसे ठीक हो गया सांप का भी उतर गया हमने ऐसा देखा है जब उसमें तक में कैसे ये हो गया तो आज यही चल रहे हैं अभी करीब अंतिम है कल यदि समय होगा तो थोड़ा सा विवरण किया है करीब हो भी गया सवेरे में भागवत होगा बाकी रह गया है रात पर अध्याय का और भ्रमण की स्थिति का संकेत में
Yeah.
कोई भी विघ्न बाधा नहीं हो सकते। और करीब करीब 1500 लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय भी हैं, विदेशी भी हैं, देशी भी हैं। इसे पंडा जी ने हम लोगों को मधुर आ गया। हे कमलनयन, तुम्हारी वाणी कैसी मधुर है और द्वारपथ मोह को पैदा करने वाली है, और उसका एक एक पद मधुर आ गया। बल उबा बल उबान में परिहास के रूप से तरह तरह के अर्थ होंगे, और मधुर सुंदर बुध मनु गया। एक एक शब्द एक एक पद एक सब कुछ मधुर, बड़े बड़े विद्वान लोग भी रम जाते हैं। सर्वस्व बुध मनु बड़े विद्वान कुछ करें क्षण उसका सब कुछ न्यवसावन करते, तुम्हारी उस बाड़ी का रसा साधन करके तुम्हारी अज्ञाकार में जातियाँ हम मोहित हो। बुलाया और फिर क्या किया, घर में जाओ अपने पतियों की सेवा करो। फिर कृष्ण ये सब मैंने कब कहा, जो जाओ तो नहीं कहा, तो आप ही ने तो कहा घोर अंधकार है, निर्जन है, पतियों को सेवा करना चाहिए। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो आपको कहा। अघो
अघोर रूपम रजनी
चांद नहीं रात थी, और हजारों करोड़ों गोपियां थी, लेकिन शांति नहीं। और पशु पक्षी रहते हैं भयंकर, यहाँ पर तो मरीज रहते हैं, हिरण रहते हैं, गोपियां रहती है। ऐसा नहीं था, इस तरह से आपकी वाणी को सुन करके हम मोहित हो रहे हैं। दान भी अपना अधर अमृत में तब कथामृतम तप्त जीवनम सत्वभेदे तब कल्पतावहम स्वर्णमंगलम शिवदहारम तब कथामृतम। बुलाहना भी देती है, ऐसी प्रार्थना की जो कृष्ण अपने को गुप्त नहीं रखते। वे जब कुछ वक्त से रोदन करने लगी कृष्ण की दर्शन की लावता से, तो ताका मावने गुरु का हो मैं वहां हम पूजा से काम बात कर रहे हैं, पर उस समय गोपियों के बीच में गले में पीतांबर लगा दिया, बड़े लज्जित हो गए, मुस्कुराते हुए मैंने इन लोगों के साथ में रूखा व्यवहार किया। इस प्रकार से उनके बीच में प्रकटित हुए, और तब गोपियां को इनके हाथों को अपने हाथ में ले लिया, कोई प्रशांत को लिया, कोई चरणों को लिया, और कोई उनके तांबूल को मुख से निकाल करके ग्रहण किया, और कोई दूर में खड़ी होकर अपने नैनों के बाण से उनको युद्ध करने लगे। और फिर उनसे पूछा प्रीति जो करते हैं उनके बदले में कोई कोई प्रीति करते हैं, जो प्रीति नहीं करते उनसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रीति करते हैं। ऐसे है कि प्रीति करो और ना करो वो किसी से नहीं करते। आप कृपा करके बतलाइए कि उनमें से आप कौन से हैं। कृष्ण ने कहा कि गोपियों मैं इनमें से कोई नहीं है। अच्छा कोई सी नहीं है तो नहीं, प्रीति के बदले जो प्रीति करता है वो बनिया है। मैं ऐसा हूं जो प्रीति करे और ना करे उस पर प्रीति कर। मैं इनमें से नहीं हूं, ये तो माता पिता दूर कर, मैं नहीं कर। हाँ मध्यमान ये लोग तुम हो सकते। तीसरा कोई प्रीति करे और ना करे आत्माराम आत्मकाम गुरु द्रोही अकृतज्ञ और अंत में गुरु। मैं आत्मकाम नहीं मेरी सब काम मैं तुम होती तो तुमको बुलाता, तुम्हारे साथ में रात करता, फिर तुमको बुलाया, तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। और आत्माराम आत्मा में ही रमण करने वाला हूँ। तो वैसे नहीं दूसरे मेरी जो आत्मा श्रीमती राधिका जी है उसमें मैं रमण करता, मैं रमण करता हूँ। और मैं गुरु द्रोही नहीं और मैं होता तो मैं अलग सकता था, मैं सामने आ गया। और गुरु तो ही तो किसी हालत में नहीं सरस्वती हम टाइटने लगे और बोली तब आप कौन है। तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए मैं पीछे क्योंकि कोई वस्तु मिल जाए चिंतामणि हाथ में और आ करके फिर वो कहीं खो जाए तो आदमी सख्त में उसी की चिंता करता है। बचे जिससे तुम्हारे बीच मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ तुम तुम्हारी प्रिय हमारे प्रति इच्छा मत करना। तुम्हारा प्रेम और बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा एवं मदद तो लोग पाना नहीं वो मई अबला इत्यादि। इस प्रकार से तब अंत में कृष्ण ने कहा न पारे हम निर्वत्त मैं तुम्हारा करूं वर्ष की आयु देता हूं कि आयु ब्रह्मा की आयु पा करके भी तुम्हारे ऋण से मैं ऋण नहीं बन सकता। तुम अपने कृपा करके अपने ही आप अपना हमारा ऋण उतार। जब ऐसा कहा तो गोपियों ने कहा गोपियां प्रसन्न हो गई। अंत में हम लोगों को ही शेयर दे तब वो साक्षात प्रसन्न हो आप ऋण मुक्त क्योंकि हमारी ऋणता आपने स्वीकार की। इसके बाद में फिर रात हुआ और रात के बाद में फिर एक ब्रह्मा का एक दिन उसी प्रकार तत्पश्चात फिर उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा गुरुकुल से आकर। अब भेजने के बाद में किसलिए भेजा उद्धव जी कुछ पाठ पढ़ करके आएंगे तब उनसे प्रेमालाप करके अपना दुख हल्का कर लूंगा। भेजा उद्धव गए प्रेम की पाठशाला में पढ़ नहीं सके क्योंकि भवन देखा प्रिंसिपल और सबको देखा और उनकी महिमा देखा नंद बाबा इत्यादि का और गोपियों की जो महिमा देखी ऐसी महिमा देखी जैसे हिमालय एवरेस्ट के नीचे कोई खड़ा हो जाए तो उसकी लगा कर जाए। फिर तो डर गए गोपियों का इतना प्रेम और इतनी दुखी है ये कहीं हम भी ना दुखी हो जाए डर गए और लौट गए कृष्ण के पास बोले कि मैं उनको बुलाने के लिए जाता चले गए। तो ये उद्धव संदेश और उसमें समर्गी बहुत ही श्रीमद भागवत का एक मणि है पंचाध्यायी पांच प्राण है उन पंच प्राणों में भी कमर की और गोपी संकेत में तुम बोलो तो
कौन सा है
उद्धव संदेश
from your mother inheritance.
Why are you anxious for that? Why are you anxious? It was in cancel the bus.
Gracias.
हे रमाराम हे राधा राम हे ब्रजगोपियों की आश्रय दाता हे ब्रजजनों के आरती को दूर करने वाले ये ब्रजभूमि तुम्हारे विरह में विरह रूपी समुद्र में डूब रही ऐसी समझे यदि तुम स्वयं आकर के बचाओ तो संभव है। इस प्रकार ब्रज को किया रोती है पूजा ऐसी समझ में उद्धव जी उन्हें ले करके गए नंद भवन में और सांत्वना देने का प्रयास किया। कोई महीने तक ब्रज में रहे उनसे कथाएं निकाली कि आप कुछ कथा सुनाओ कौन कौन स्थान में कृष्ण ने लिलाने की जिससे उनको सांत्वना मिले। इस प्रकार उन्होंने ब्रजभूमि में सर्वत्र भ्रमण किया। राधा जी के जो निर्मल मास यह प्रेमय प्रलाप चरण ये सब सुन करके उद्धव जी स्वयं प्रार्थना करने लगे हे रामराम सर्व दो भूमि हो पवत्त। इस ब्रजभूमि में संसार में यदि जन्म सार्थक है तो एकमात्र ब्रजगोपियों का सार्थक है क्योंकि निखिल आत्मा गोविंद तो सबके हृदय में है सबके अंदर जामी है। कितने लोगों को भाव है परंतु ब्रजगोपियों का प्रेम स्नेह मान प्रणय राग राग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ महाभाव जिन पर भाव में गोपियां डूबी हुई है जिन भाव को ब्रह्मा जी से ले करके हम सभी कर बच्चा करते हैं कि ये अभिलाषा करते हैं उनका एक कण भी मिल जाए परंतु संभव नहीं। किम ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रस कृष्ण कथा रस के बिना इस भाव के कारण प्राप्ति के बिना जीवन तो व्यर्थ है। केवल अहंकार अभिमान लेकर के इस मनुष्य जीवन को पा करके क्या लाभ यदि कृष्ण भक्ति रस में सदाए सरसिद्ध सरस नहीं बना। उस जमाए कहते हैं इसलिए उद्धव जी ने प्रार्थना की इस ब्रजभूमि में कहीं ब्रजगोपियां जो महाभावती है उन गोपियों के चरण हमें मिल जाए ब्रज में दिन गुण लता हो करके मेरा जन्म हो जाए। इसी तरह से वे प्रार्थना करते हुए अंत में कहते हैं न बंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभी सृजन जाता हरि कथुर गीतम खुड़ाती भुवन त्रयम। नंद ब्रज की जो गोपिया है उन गोपियों के चरण रेणु की मैं सदैव वंदना करता हूँ जो कि जीवन में एक गुण कर उन्हें प्राप्त हो जिनकी पवित्र हरि कथाएं संसार को पावन करती है। ऐसी पावन कथाएं हम सबके हृदय में स्फुरित हो स्फूर्ति प्राप्त हो। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना की है आज वही प्रार्थना करते हैं।
गुरु जी की आज्ञा भी है कि हमारे धर्म जो है वह है सनातन। जब हम संसार में आते हैं तो इस सनातन परंपरा में ही आते हैं तो इस सनातन धर्म के रूपरेखा क्या है। सनातन का अर्थ होता है जो नित्य वर्तमान वास्तव स्थिति का पहचान और उस शुद्ध स्थिति में वास्तव स्थिति में पहुंचे उसी को सनातन धर्म कहते हैं। वर्तमान में हम जिस स्थिति में हैं हमारे लिए बहुत ही शरीर को लेकर के हम घूमते हैं इसी को ही हम लोग यही शरीर ही में हैं। ये संसार के खाने पीने रहन सहन के जितने वस्तुएं जितना संग्रह कर लिया जाए उतना ही अच्छा उतना ही लाभ यही जीवन की सार्थकता मानते हैं। परंतु कोई भी व्यक्ति वास्तव शांति प्राप्त नहीं कर पाता। खाना पीना भोग विलास ये तो सभी जगह जैसे मनुष्यों में वैसे प्राणियों में भी। इसलिए शास्त्रों ने कहा है धर्मो ही तेषा अधिको विशेष, केवल आहार निद्रा भय और एक दूसरों में प्रेम प्रति प्यार केवल इतना ही जीवन का सार है। धर्म ही मनुष्य जीवन की विशेषता है। हम खाए बिना 2-4 दिन 10 दिन 40 दिन 50 दिन तक रह सकते हैं। और संसार में एक ऐसा चीज है जिसके बिना हम एक क्षण जी नहीं सकते, तो है प्यार सही, जिसके बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते। जिस समय हमें यह दिखेगा कि हमें संसार में कोई प्रेम करने वाला प्यार करने वाला नहीं है, उस समय कोई रेल में डरते हैं तो कोई आग में डरते हैं, इसी न किसी तरह से समाप्त हो जाए। तो ये वास्तव प्रेम जनित सुख आनंद है, उसी का पर्यायवाची शब्द है प्रेम। वह वास्तव प्रेम इस जगत में नहीं है, भौतिक वस्तु में नहीं है। इसलिए वेदांत में कहा है रसो वैसर रसाम धेवायम लब्धानंदी भवति, भगवान से हरि रस स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप। उस परम प्रेम वाले परमात्मा भगवान से हरि को जो कोई प्राप्त करता है वह परम आनंद का ही अनुभव करता है। इसलिए वेदांत में वही बात करते हैं नित्यो नित्ता, जो नित्य वस्तुओं में परम नित्य है, चेतन वस्तुओं में जो परम चेतन, एको बहुनाम जो विदधाति कामना, जो एक है और सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जहां तहां हम देखते हैं दीवारों में लिखे रहते हैं, क्या लिखता है कि एक राष्ट्र अनेक धर्म, इस पर हमें गर्व है, दीवारों में लिखे मिलते हैं। परंतु सनातन धर्म हमें इस बात को नहीं कहते, वे क्या कहते हैं अनेक राष्ट्र एक धर्म, इस पर हमें गर्व है। बहुत राष्ट्र हैं पूरे विश्व में किंतु सबका धर्म एक। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है समय पुंसाम परम धर्म, प्राणी मात्र का परम धर्म समस्त विश्व के मानव प्राणी समाज जितने भी समाज सबके लिए एक ही धर्म होता है, दोनों वह है अधम से भगवान के चरणों में अपने हृदय के निष्कपट भावना को समर्पण करते। यही संसार में मानव मात्र का प्राणी मात्र का परम धर्म निष्कपट रूप से अपने हृदय के भावना को समर्पण करें, छल कपटता ये सब को छोड़, इसी को परम धर्म कहा है। इसलिए हमारे सनातन धर्म नास्तिकता की बात नहीं कहती है, आस्तिकता की बात करती है। हमारे सनातन धर्म में कौन है मूल देवता, जो एक बहुनाम जो विदधाति कामान, एक हो करके समस्त जीवों के अंतर्यामी परमात्मा जो घट घट वासी है। विश्व के ऐसे कोई भी वस्तु नहीं, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश पहाड़ पर्वत नाद नदी समुद्र सभी कुछ उन्हीं का ही तो स्वरूप है, उन्हीं का ही तो अवयव है, वे सर्वत्र अणुअणु में व्यक्त है, फिर भी वे साकार सच्चिदानंद स्वरूप है, वे लीला पुरुषोत्तम है। भक्तों के सामने अपना प्रेममय मूर्तिमान विग्रह स्वरूप में ही स्वयं प्रकट होते हैं, सबकी इच्छा अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। इसलिए कहा तम आत्मस्थम जीवन पर शांति धीरा देशां शाश्वते शांति न इत्रेषा, जो लोग उस परम पुरुष भगवान श्री हरि को अपने हृदय में दर्शन करते हैं वे ही परा शांति को प्राप्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो बहिर्दृष्टि संपन्न है केवल भोगों की ओर भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, उनकी आंखों में न तो भक्ति है न प्रेम है न श्रद्धा है न भावना है और न ही कुछ दर्शन होता है, केवल नास्तिकता में ही भरे रहते। एक समय एक सज्जन की बात थी, वे कहते रहे हैं बोले कि भाई हम बचपन से ही एक मंदिर में जाते रहे, और देखा क्या कि मंदिर के दरवाजे में कुछ साधु लोग बैठे रहते हैं, जितने भी महिलाएं आती हैं, माताएं बहने और जितने लोग आते हैं, कुछ न कुछ वहां पर चावल पैसे गेहूं इत्यादि सब डाल के जाते हैं। तो एक बार वे बोले कि मैं बहुत दिन जब नौकरी के क्षेत्र में चला गया, काफी दिन में लौटा, तो आ करके देखा कि वही साधु लोग बैठे हुए हैं। मैंने पूछा, भाई आप लोगों को बचपन से मैंने देखा, आज बहुत देर के बाद में देखा लौटते मिलते। पर तो ये मेरा प्रश्न है कि कभी भी इस मंदिर में न कीर्तन करते हुए, न भजन करते हुए, न पूजा करते हुए, न पाठ करते हुए किसी में भी हमने नहीं देखा, केवल बैठे हुए देखा, तो आप लोग क्या करते हैं? तब उन लोगों ने बताया कि हम लोग पूजा पाठ करते नहीं है। बोले क्यों? बोले हम तो मूर्ति नहीं मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। तो वे बोले, अरे मूर्खे जनका, तुम भगवान को नहीं मानते हो तो मंदिर में क्यों बैठा हुआ है? बोले इसलिए बैठा हुआ है कि मंदिर में सभी लोग आते हैं, लोग खाने पीने को देते हैं, अब लोग खाने पीने को मिल जाता है और आराम से यहाँ पर खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इसलिए हम रहते। बोले अरे बेटा, जिनके नाम पर मंदिर में बैठा हुआ तुम्हें खाने पीने को सभी कुछ मिल रहा है, सभी सुख सुविधा है, और उस भगवान को पूजने में तुम्हें इतनी नास्ती लगता है विश्वास करने में, तो यही विश्वास नास्तिकों को नहीं होता है। उनकी आंखों में कुछ सुनता नहीं है, नास्तिकता नहीं। आज समाज में, संसार में देखें, दो श्रेणी के लोग बटे हुए हैं, नास्तिकवादी और आस्तिकवादी। उसी तरह से आस्तिकवादियों में भी दो प्रकार के, एक निराकार निर्विशेषवादी और एक सविशेषवादी। आज देखिए विश्व के अंदर में, चाहे हिंदू कहें, मुस्लिम कहें, क्रिश्चियन कहें, सभी में आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो कि निराकारवादी, निराकार की उपासना करते हैं। बोले हम निराकार को मानते हैं, हम भगवान के रूप को नहीं मानते। बोले अच्छी बात है, भगवान के रूप को नहीं मानते कोई बात नहीं, परंतु उसका नतीजा और परिणाम जो दिखाई दे रहा है आपके सामने, उसमें क्या है? आप देखिए, चर्च में जा करके रविवार को जब पहुंच करके गॉड के सामने, वो गॉड फॉरगिव मी, 7 दिन तो बुरा कर्म करेंगे, जितने बुरे कर्म सब करके, और गॉड से फॉरगिव मी करेंगे तो गॉड क्षमा करेंगे। आज जितने निराकारवादी हैं, देखिए कितने बार उठते और बैठते हैं और कितना प्रार्थना कर रहे हैं अल्लाहु अकबर करके, परंतु जितने चोरी डकैती लूट मार बदमाशी और जितने प्रकार के बुरे कर्म है सब नहीं हो रहा है, अधिकांश। तो इस उपासना का क्या मूल्य हुआ जब समाज में नैतिकता नहीं है, जब कोई आदर्श नहीं है, कोई हमारे अंदर शिक्षा नहीं है? एक मुस्लिम सज्जन मुझे बोले, बोले भाई चैतन्य महाप्रभु जी आए, चैतन्य महाप्रभु जी आए तो एक मुस्लिम ने मुझे बुलाया अपने घर में, बुला करके बैठा, बड़े आदर से बोले और बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं हिंदुओं में एक शाक्तवादी है और एक वैष्णव है और एक हिंदूवादी है। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जिस प्रेम धर्म को देखा है वैष्णव धर्म, उसमें राधा कृष्ण की उपासना की बात कही। उन्होंने कहा महामंत्र कर भैनाम राधा कृष्ण की उपासना करो, ये बात क्या थी? बोले उपासना करने से, भक्ति करने से भगवान से, संसार से लोग मुक्त होकर के भगवान के लोग जाएंगे, भगवान के परिकर बन जाएंगे, ये बात सत्य है। वो तो पीछे की बात रही, साधारण समाज में जब देखा जाएगा कि इसका परिणाम क्या निकल रहा है, जितने भी वैष्णव धर्म को अपनाने वाले वे सभी आने वाले पीढ़ी में सभी बच्चे देखते हैं कि हमारे भगवान इतना प्रेमी है और इतने आनंदमय है, प्रेममय है, गुणों के सागर है, दया के सागर है, तो हमें भी जीना होगा संसार में दया के साथ, सभी गुणों के साथ, प्रेम के साथ, प्रीति के साथ। आज ये छापड़ा हुआ है।